आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रभर में होंगे आयोजन। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक। और प्रदेश में भीषण गर्मी ने दी दस्तक, कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। ये 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन गलियारा दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को 6 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे कर देगा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सहारनपुर यूपी में एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे का जायजा लेंगे। इसके बाद वे देहरादून के प्रसिद्ध जयमा डाटकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट में वन्यजीव संरक्षण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनमें 8 पशु मार्ग, हाथियों के लिए विशेष अंडरपास शामिल हैं। आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस ये गलियारा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास और व्यापार के लिए नए द्वार खोलेगा। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. भीमराव आम्बेडकर की 136वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में डॉ. भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, गहन विचारक, विधि विद्वान और समतावादी सामाजिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस मौके पर डॉ. आम्बेडकर नगर महू में स्थित उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक में विशाल समागम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से इस आयोजन में शामिल होंगे। यहां पर मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं नर्मदापुरम, खंडवा, आगरमालवा, मंदसौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भव्य आयोजन किए जाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू में 12 अप्रैल से 3 दिवसीय समागम के तहत अनेक आयोजन जारी हैं। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोह में प्रदेश सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अनुयायी और बौद्ध भिक्षुक शामिल होते हैं। आज सुबह से बाबा साहब की जन्मस्थली पर दर्शन के लिए अनुयायियों की कतारें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विशेष रूप से इस आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान वे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी 14% से बढ़कर 33% हो जाएगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प की सिद्धि और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया।
पहले बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और वो महिलाओं के हमारे घर में भी जब घर के कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो हम बेटी की पूजा करके, कन्या पूजन करके करते हैं। तो मोदी जी का मानना है कि नारी एक शक्ति है और जब उसको अधिकार हम देंगे तो इस भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी और वो भी इस विकास आधारशिला की साक्षी बनेगी।
समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम कल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीएम हाउस से रिजल्ट जारी करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब किताबी ज्ञान के साथ स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 3,367 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया है। वर्तमान में समग्र शिक्षा पीएमश्री और स्टार जैसी योजनाओं के तहत करीब 5,95,000 छात्र विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अतिरिक्त संचालक मनीष वर्मा के अनुसार आयुक्त अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में 6,505 प्रशिक्षित ट्रेनर आईटी, हेल्थ केयर और कृषि जैसे 17 प्रमुख सेक्टर्स में 42 जॉब रोल्स के लिए प्रयासरत हैं। सहायक संचालक अभिनव आर्य के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए भी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जो उद्योग जगत में पूरी तरह मान्य है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है और सरकार का लक्ष्य हर स्कूल को स्किल हब बनाना है। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य तेजी से जारी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कल तक 17,572 किसानों से 7.75 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसके बदले किसानों को करीब 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बता दें कि इस साल सरकार किसानों को बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रतलाम 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, वहीं खरगोन में 40 डिग्री, नर्मदापुरम में 40.8 और मंडला में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल, इंदौर में पारा 38.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि जबलपुर में 38.2 और ग्वालियर में 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाले इस विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि बढ़ाकर 87,64,615 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है। विजेता टीम को 23,40,000 अमेरिकी डॉलर जबकि उपविजेता को 11,70,000 डॉलर मिलेंगे। ये प्रतियोगिता 12 जून से शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। उन्होंने इतिहास रचते हुए पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले 1965 में यह उपलब्धि दिनेश खन्ना ने हासिल की थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जिसके लिए 52,991 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। खंडवा में आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एनीमिया और शुगर की जांच के साथ निक्षय मित्र बनने की अपील की गई है। नर्मदापुरम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनजागरूकता रैली निकालकर विद्यार्थियों और नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मंदसौर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की खुशी में नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में आभार रैली निकाली गई। कटनी जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए तिलक कॉलेज के छात्रों ने प्लास्टिक दानव के माध्यम से रैली निकालकर समझाइश दी। गुना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सिम हेल्पलाइन की लंबे शिकायतों को गंभीरता लेते हुए 50 दिन से पुराने शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के नवागत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने पदभार ग्रहण कर अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैतूल जिले में गांव बस्ती चले अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैलगाड़ी चलाकर ग्रामीण जीवन से जुड़ाव का संदेश दिया और स्वच्छता अभियान चलाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।